जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिष्ट डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो भक्तराज प्रह्लाद महाराज की चर्चा पिछली बार चल रही थी, उनके दिव्य चरित्र के बारे में और उनके उपदेशों के बारे में। हम कथा यहां पर पिछली बार समाप्त कर चुके थे कि युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं नारद मुनि से कि ऐसे कैसे संभव है कि एक पिता अपने ऐसे आज्ञाकारी सौम्य और बहुत ही सज्जन बच्चे से इतना अत्याचार करे और बल्कि उसे मारने की भी कोशिश करे। वैसे साधारणतः देखा जाता है दुनिया में कि माता पिता अपने छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन यहां हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद के संदर्भ में हम देख रहे हैं या हम सुन रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने बहुत ही हिंसा की प्रह्लाद के ऊपर, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। और युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न तब पूछा जब नारद मुनि ने प्रह्लाद महाराज का चरित्र का वर्णन किया कि किस तरह के वो भक्त हैं, उनकी चेतना कैसी थी, उनकी भगवत भावना और भक्ति कैसी थी, किस प्रकार से वो दुनिया में रहते थे, उनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना कैसे होता था, किस भावना में होता था। तो इस प्रकार से ये सारा वर्णन सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य लगा कि इतने योग्य पुत्र, इतने सुशील बच्चे के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करना, ये तो बहुत ही आश्चर्य भ्रमित करने वाली बात है। तो कृपया सुनाइए कि क्या कथा थी, वो क्या क्या कारण था। फिर आगे चल के नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाने जा रहे हैं, प्रह्लाद महाराज की जीवनी सुनाने जा रहे हैं। और वो बताते हैं कि वैसे जब प्रह्लाद महाराज 5 साल के हो गए तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि अभी विद्यारंभ होना चाहिए। विद्यारंभ मतलब जो शिक्षा है पाठशाला में या गुरुकुल में, उसकी शुरुआत होनी चाहिए। वैसे विद्यारंभ, ये विद्या का मतलब है जो वास्तव में भगवान से संबंधित है, जो शाश्वत जीवन से संबंधित है, वो विद्या है। सच्चा ज्ञान तो ये है। इस भौतिक जगत के ज्ञान को अविद्या कहते हैं, भले वो कितने ही विस्तार से बनाया क्यों न हुआ हो, अंततः ये अविद्या है। जो चीज हमें संसार के बंधन से बांध के रखेगा वो अविद्या है, जो हमें संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है वो विद्या है। अब देखिए, यहां भी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में ऐसे कितने सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, परंतु क्या ऐसे विषय कोई पढ़ाया जाता है जिससे कि विद्यार्थी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए सक्षम हो जाए? चाहे गणित हो, इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, या जो भी कुछ हो, बहुत विस्तार में ये ज्ञान, ये जो विषय हैं बढ़ाए गए हैं, बड़े बड़े किताब हैं, सालों साल लग जाते हैं किसी विद्यार्थी को किसी भी एक विषय में प्रवीण होने के लिए। और इतना सब होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी ये जान लेगा कि मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तव में इस जगत में हम सुख और शांति की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, भगवान के धाम में कैसे लौट के जा सकते हैं। विद्यार्थी को ये ज्ञान तो होता ही नहीं है, केवल संसार के ज्ञान का प्रशिक्षण उसे प्राप्त होता है। तो हालांकि ये विद्या कहलाता है, हम कहते हैं विद्यालय, विश्वविद्यालय, परंतु वास्तव में ये विद्यालय नहीं है, अविद्यालय है। एक दृष्टि से देखा जाए तो अविद्या का भी महत्व है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार से संबंधित जो ज्ञान है वो पूरी तरह से बेकार है, ऐसा नहीं है। जैसे यहां जीवन निर्वाह करने के लिए भी हमें संसार का ज्ञान तो आवश्यक है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। जैसे कृषि का ज्ञान है, अगर कृषक को ज्ञान नहीं होगा कि खेती कैसे करना है तो कैसे अनाज का उत्पादन करेगा और हम लोग कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे। उसी प्रकार से हर एक विषय जो भौतिक जगत में सिखाया जाता है उसका थोड़ा सा भाग तो महत्वपूर्ण है, हमें इस संसार में जीने के लिए सहायता करता है। इसलिए ईशु परिषद में कहा गया है कि व्यक्ति को विद्या और अविद्या दोनों को समझ लेना चाहिए, कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि इस जगत में हमें कैसे जीना है, किस प्रकार से रहना चाहिए। और क्योंकि जीना इस भौतिक जगत में बहुत ही गहरी बात है, इसलिए अलग अलग विषय में प्रवीण लोग होते हैं। कोई गणित में है तो कोई व्यवसाय में है तो कोई डॉक्टरी में है तो कोई किस में, तो इन सब चीजों से हम थोड़ा थोड़ा कुछ लाभ ले सकते हैं जहां तक कि हमारे जीवन निर्वाह करने का प्रश्न आता है। परंतु हमें भले भांति जान लेना चाहिए कि वास्तव में ये केवल संसार तक या प्रपंच तक ही सीमित है। भले कितने मोटे मोटे किताब हों, बड़े कितने बड़े बड़े विद्यालय विश्वविद्यालय हों, बड़े इनको सिखाने भले इनको सिखाने वाले व्यक्तियों को भी बड़े बड़े पुरस्कार क्यों न मिले हों, परंतु अंततः ये ज्ञान हमें संसार के भीतर ही बांध के रखेगा जब तक कि हम वास्तविक विद्या को प्राप्त नहीं करेंगे। वास्तविक विद्या को प्राप्त करने के बाद फिर अविद्या से थोड़ा बहुत जो आवश्यक है हमें जीने के लिए और सुखी तरह से शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए, उस हद तक हम अविद्या को स्वीकार कर सकते हैं। परंतु अविद्या को ही अगर हमने सर्वस्व मान लिया और पांडित्य की गणना हमने की इस दृष्टि से कि कौन अविद्या में ज्यादा प्रवीण है, तो ये गलत होगा। विद्या का नापतोल अगर करना है तो इस दृष्टि से कि कौन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ चुका है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए कौन आगे बढ़ा है, ये है लक्षण। केवल ये नहीं कि हम किसी स्कूल या कॉलेज से कोई डिग्री प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप को इच्छा थी कि प्रहलाद को बहुत ही सुशिक्षित बनाना है, लेकिन हिरण्यकश्यप असुर प्रवृत्ति के आदमी थे, उनको अविद्या के बारे में ही जानकारी थी, विद्या के बारे में ना तो रुचि थी ना तो कोई ज्ञान था। वो तो भगवान विष्णु से घृणा करते थे। तो जब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरे बच्चे की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, तो पढ़ाई का मतलब क्या, विद्या का मतलब क्या है? विद्या का मतलब है उसे राजनीति सिखाना, कैसे पैसे कमाना ये सिखाना, कैसे शत्रुओं का दमन करना ये सिखाना, कैसे शत्रुओं के बीच में भेदभाव करके उनके बीच में झगड़ा पैदा कर देना, इस प्रकार से उनका भेद करना, संसार में कैसे बहुत भोग करना, कैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। हिरण्यकश्यप सोच रहे थे कि ये विद्या है, यही प्राप्त करने योग्य ज्ञान है, इसके अलावा और कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, बस इतना है तो काफी है। उसी प्रकार के आजकल समाज में दुर्भाग्य से हिरण्यकश्यप के अनुयायी कई हैं, जो निंदा करते हैं भक्तों की, जो जाकर प्रवचन सुनते हैं, भागवत गीता आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि ये समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, उस समय में अगर तुमने कुछ अच्छी भौतिक किताब पढ़ ली होती तो आज संसार में कितने आगे बढ़ गए होते। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि आगे बढ़ने के बाद अंत में क्या होना है, मृत्यु आनी है और फिर से जन्म होना है और फिर से वही चक्र। तो क्योंकि इनका सोच गहरा नहीं होता, ज्ञान विस्तार नहीं होता, इसलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं। और हिरण्यकश्यप तो उनके नेता है और हिरण्यकश्यप सोच रहे हैं कि कैसे प्रहलाद को बिल्कुल पक्का असुर बनाया जाए। ये इच्छा थी, जो असुर होता है वो भी चाहता है कि उसके प्रिय लोग सब असुर बन जाएं, जैसे भक्त होता है वो भी चाहता है कि मेरे प्रिय लोग भी भक्त बन जाएं। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भेजा शुक्राचार्य के पुत्रों को के पास, जिनके नाम थे शंड और अमरक। अब शुक्राचार्य कुल गुरु थे, अब जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के कुल गुरु हैं और शुक्राचार्य असुरों के कुल गुरु। बलि महाराज के समय में भी शुक्राचार्य का महत्वपूर्ण, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो मना करते हैं बलि महाराज से कि आप इनके शरण में नहीं जाना, दान नहीं देना, ये तो स्वयं विष्णु है। और बलि महाराज ने उत्तर दिया था, तो ठीक है विष्णु है तो बहुत अच्छा, तो मुझे शरण तो जाना ही चाहिए। तो शुक्राचार्य पहले से ही कई सालों से असुरों के कुल गुरु होने के नाते वो हिरण्यकश्यप के कुल के भी गुरु थे और उनके दो पुत्र शंड और अमरक सारे असुर पुत्रों को उपदेश देते थे, शिक्षा प्रदान करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने उनको बुलाया और कहा कि अच्छे खासे उनको भौतिक शिक्षण दिला देना। और शंड अमरक ने कार्य शुरू कर दिया और इस प्रकार से दोनों अपने पाठशाला जाते रहे, गुरुकुल जाते रहे, प्रहलाद और उनके साथ साथ उनके जो मित्र थे अन्य असुरों के बच्चे। और फिर यहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यह तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवे अनु पाठ च, कि शुश्रुवे बड़े श्रद्धा से, या श्रद्धा से नहीं बड़े ध्यान से अवश्य उन्होंने श्रवण किया। शुश्रुवे अनु पाठ च, मतलब उसको बार बार बोलना, पीछे बोलना, क्योंकि वैदिक पद्धति के अनुसार शिक्षा ऐसे प्रदान की जाती थी कि गुरु कुछ बोलते थे और उनके पीछे पीछे विद्यार्थी बोला करते थे। अनुपपाठ च, तो प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही पाठ किया करते थे, जो भी षंड और अमरक बोला करते थे। गुरुणा प्रोक्ता, तो जो गुरुजनों ने बोला वो दोहराते रहे, इस प्रकार से बड़े ध्यान से करते रहे। ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई लापरवाही की, परंतु हालांकि वो ध्यान से सुनते थे हर बात को, न साधु मनसा मेने, उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा कि जो बातें ये कर रहे हैं, उनके गुरुजन कर रहे हैं, वो जान लिए कि ये ठीक नहीं है, ये दर्शन ये फिलॉसफी ठीक नहीं है जो बोल रहे हैं। हालांकि ध्यान से सुन रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन मन में उन्होंने सोच लिया, न साधु मनसा मेने, मैंने मतलब माना, मनसा मतलब मन में, साधु मतलब अच्छा, न मतलब नहीं, ये जो मैं सुन रहा हूं, जो चीज मैं पाठ कर रहा हूं, वो अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से जब कोई पाठशाला में जाकर कोई विद्यार्थियों को कोई बताते हैं, शिक्षक अगर कोई गलत चीज बताए जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, जो नास्तिकवाद है या भोगवाद है, तो शिष्य जो विद्यार्थी होता है उसको तो सुनना पड़ता है, फिर परीक्षा में भी बैठना पड़ता है, तो अवश्य वो सुनना चाहिए, परंतु मन में विद्यार्थी को जान लेना चाहिए क्या ये गलत है। हम जब स्कूल में थे तो हमारे एक अध्यापक थे जो हमको इतिहास पढ़ाते थे, और वो नास्तिक थे। तो अभी हम भगवद गीता पढ़ने के बाद हमें याद आया कि क्या बोल रहे थे और कितना बकवास कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि कैसे वेद ये सब शास्त्र क्या है, ये सब बेकार चीजें हैं, सब व्यर्थ है ये, क्योंकि इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे पुराने वैदिक काल में ये शास्त्र क्या थे, वेद अरण्यक ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि सब वर्णन करते हुए कहते थे आपको सिखाना ये सब है आपके इसमें, लेकिन सब बेकार है, सब असत्य है, किसने देखा है भगवान को, क्या है ये, इस प्रकार से वो बातें करते थे। तो उस समय तो हम लोग प्रभावित होते थे, छोटे बच्चे थे, प्रभावित होते थे, लेकिन बाद में पता चला। उसी प्रकार से हमने सुना है यहां भी बेलगाम में कई विद्यालयों में कभी कभी ऐसे अतिथि अध्यापकों को बुलाया जाता है जो प्रवचन देते हैं बच्चों को और बताते हैं कि कैसे भगवान नहीं है, ऐसी सब गलत उपदेश दिए जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जो भी बच्चे हैं उनको घर में ऐसे अच्छे अच्छा प्रशिक्षण मिले कि वो समझ लें कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और जब वो अपने विद्यालय विश्वविद्यालय में जाएं और उनको ऐसी कोई बात सुननी पड़े, तो सुनना तो पड़ेगा क्योंकि अभी परीक्षा पास होके फिर वो डिग्री आदि प्राप्त करना है इस दुनिया में जीने के लिए, ये तो आखिर अपने दाल रोटी का ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं, दाल रोटी वाला ज्ञान है, तो दाल रोटी के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन मन ही मन में जान लेना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। जैसे आजकल विज्ञान में ये भी सिखाते हैं कि मनुष्य बंदर से आया है, ऐसे सिखाते हैं ना, दसवीं कक्षा में भी सिखाते हैं एवोल्यूशन, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। और बंदर कहां से आया, बंदर उनके निम्न श्रेणी की योनि से उत्पन्न हुआ, और वो निम्न श्रेणी की योनि उससे निम्न श्रेणी वाली योनि से उत्पन्न हुआ, और ऐसे पीछे जाते 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 सब कुछ कहां से आया, छोटे कीटाणु से आया, और ये कीटाणु कहां से आया, अंततः सबसे छोटा कीटाणु है वो कहां से आया, तो कहते हैं कि वो जड़ पदार्थों से उत्पन्न हुआ। तो यही पॉइंट है जिसपे प्रभुपाद बहुत कड़क निंदा करते थे, कि वो कहने लगे कि दुनिया में विज्ञान मतलब आपको साबित करना चाहिए आप जो कह रहे हैं, दुनिया में हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों ऐसे उदाहरण हम साबित कर सकते हैं कि जीवन केवल जीवन से आता है। हम सब अपने माता पिता से आए जो जीवित थे। जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, सब हैं, सब जीवित वस्तुओं से, व्यक्तियों से आए हैं या प्राणियों से आए हैं, परंतु एक भी उदाहरण हमारे सामने नहीं है कि किसी मृत चीज से कोई जीवित वस्तु आया हो। ऐसे संभव नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो ऐसा साबित करके देखिए। और प्रभुपाद ने बहुत विस्तार में कहा इस बात को। तो ये एक दुविधा में पड़ जाते हैं, भगद्वंद्व में पड़ जाते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। ऐसी बातें सुनते हैं प्रहलाद की तरह हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि अध्यापक भी शंडमर की तरह होते हैं और बच्चे जो भक्ति मार्ग में प्रशिक्षित हो रहे होते हैं वो प्रहलाद की तरह होते हैं। तब क्या करना चाहिए उनको? तो प्रहलाद की तरह रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? न साधो मनसा मैंने, सुन लेना अनुपपाठ च, ठीक है, सुन लो, पाठ कर लो, सब कर लो, परीक्षा के लिए अच्छा लिख लो जो लिखना है, परंतु अंदर से जान लो ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें कि मनुष्य बंदर से आए, ये वो बहुत कुछ सुन लेना, परीक्षा में लिखना, लेकिन सत्य इसको नहीं मानना। सत्य तो केवल शास्त्रों की बात है। और विशेष करके प्रहलाद को क्या बात पसंद नहीं आई उनके अध्यापकों के शिक्षण में? स्व पर असत ग्रह आश्रयम, कि असत ग्रह आश्रयम, ये जो षंड और अमर्क है इन्होंने असत को ग्रहण कर लिया था और इसका आश्रय ले रहे थे। एक असत्य मिथ्या दर्शन का आश्रय ले रहे थे। वो मिथ्या दर्शन या असत दर्शन क्या था? स्व पर, मतलब ये मेरा मित्र है स्व, और पर वो मेरा नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। तो प्रहलाद महाराज को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये भावना कि हम सोचते हैं कि ये मेरे मित्र हैं, वो मेरे शत्रु हैं, तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वास्तव में आजकल राजनीति का आधार ही यही है। राजनीति में हमें स्वीकार करना है कि ये अपना शत्रु है, ये मेरा मित्र है। हाँ, राजनीति में मित्र और शत्रु के मुख बदलते रहते हैं, क्षण में बदलते हैं, दिन की बात तो दूर है। आज कोई व्यक्ति हमारे पक्ष में आया, हमें आधार दिया, अगले क्षण में किसी ने उसको ज्यादा पैसे दिए, दूसरे के दल में चला गया। ये तो चलता है ना राजनीति में। तो राजनीति में कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। अपने बच्चों पे, माता पिता के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार के स्थान और पद आदि के प्रलोभन से लोग पागल बन जाते हैं और ऐसे रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यहां राजनीति में मित्र और शत्रु की भावना होनी ही होनी है। और ये राजनीति का वातावरण सारे समाज में फैल गया है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। तो हर घर घर में ये बात आती है, यही चर्चा, ये हमारे मित्र, ये हमारे शत्रु। परंतु वास्तव में भक्त जो होते हैं ऐसा नहीं करते हैं। वो विशेष करके मित्र और शत्रु नहीं बनाने में नहीं लगे हुए हैं। वो जानते हैं कि हर एक प्राणी जो है वे भगवान का अंश है और इसलिए सब हमसे प्रिय हैं। जिस प्रकार से भगवान प्रिय हैं, तो भगवान के अंश वो सब प्रिय हैं भगवान के। तो भेदभाव नहीं करते भक्त इस प्रकार से कि ये हमारे मित्र हैं और वो हमारे शत्रु हैं। तो भक्त जो होते हैं वो हमेशा एक मैत्री का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं सब जगह। अपने आप को किसी का शत्रु नहीं मानते हैं वो, या किसी को अपना शत्रु वो नहीं मानते, परंतु दूसरे लोग भक्तों को कभी कभी शत्रु मान लेते हैं, वो दूसरी बात, वो दूसरों की समस्या, भक्तों की समस्या नहीं है। तो हमें जान लेना चाहिए इस बात को। कोई अगर कहे कि अरे वो हमें शत्रु मानता है तो हम उसे शत्रु क्यों नहीं माने, नहीं, वो हमें शत्रु मान रहा है तो वो उसकी समस्या है। जैसे अगर कोई हमें कुछ उल्टा बोल देता है, हमारा अपमान करता है, तो हम क्या सोचेंगे कि मेरी बहुत बड़ी समस्या हुई है। क्या हुई? किसी ने मेरा अपमान किया और हमारे अहंकार को बहुत चोट पहुंच गया। परंतु सत्य क्या है? सत्य ये है कि समस्या हमारी नहीं है, समस्या उसकी है जिसने निंदा किया है, उसकी समस्या है। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या तब होगी जब अपने आप को अहंकार से हम अहंकार से जोड़ के रखेंगे। अरे उसने मेरे साथ ऐसे कहा, ये किया, तब हमारी समस्या शुरू हो जाती है। अगर हमने अपने आप को आध्यात्मिक स्तर में स्थित करके रखा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि क्योंकि वो निंदा करता है तो उस निंदा के फलस्वरूप उसको ही परिणाम मिलेगा, उसको 10 गुना ज्यादा कोई और निंदा करेगा, उसको बहुत दुख हो जाएगा, तो वो अपने ही दुख को निमंत्रण दे रहा है। हमें उसको दुख देने की जरूरत नहीं है, उसके कार्य ही पर्याप्त है उसको अपने आप दुख का निमंत्रण करने के लिए। तो हमें आगे जाके उसको क्यों दुख देने के लिए देखना, उसने मुझे अपमानित किया, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, क्यों अपने को इसमें पढ़ना है। तो प्रहलाद महाराज इस बात से भले भांति परिचित थे, वो कहते थे ये सब मित्र शत्रु का गोलमाल हमें नहीं चाहिए, हम सब जानते कि सब भगवान श्री कृष्ण के अंश है। तो एक बार जब कई दिन बीत गए थे तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, एकदासुर राट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव पप्रच्छ कथयतम वत्स्य मन्यते साधु यद् भवान। एकदा मतलब एक बार, असुरराट असुरों के सम्राट, पुत्रम अंकम आरोप्य पुत्र को बुलाया और आरोप्य उठा लिया, अपने गोदी में बिठा लिया। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बुलाया, एक बार गोदी में बिठाकर प्रपच्छ पूछा उनको, कथयताम वत्स, हे वत्स, ये कहा जाए तुमसे, मन्यते साधु यद् भवान, कि तुम किस चीज को अच्छा मानते हो। अर्थात हिरण्यकश्यप कहना चाहते थे कि तुमने कई चीजें तुम्हारे विद्यालय में गुरुकुल में सीखी हैं, उनमें से सबसे अच्छी वस्तु क्या सीखी है तुमने, सीखा है तुमने, जरा बताना, तो सबसे अच्छा तुम क्या मानते हो। यह साधु शब्द का अर्थ है अच्छा। जैसे अगर कोई सभा में कोई बहुत अच्छी बात कहता है तो अन्य लोग जो है प्रशंसा करते हैं, साधु साधु साधु, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार उसी प्रकार से पिछले श्लोक में भी हम सुन रहे थे, न साधु मनसा मेने, साधु मतलब अच्छा नहीं भला है, न साधु। तो यहां पर भी बताया गया, सुखदेव महाराज कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे प्रहलाद, मुझे ये बताओ कि तुम क्या मानते हो, कि इस दुनिया में अच्छी चीज कौन सी है, क्या है अच्छा। हिरण्यकश्यप जानते थे कि प्रहलाद तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इसलिए कोई मुश्किल चीज नहीं पूछा उन्होंने, बल्कि मामला खुला छोड़ा और प्रहलाद को मौका दिया कि वो खुलेआम बात करे। ऐसे कोई विशेष प्रश्न नहीं किया कि ये बताओ कि ये शास्त्र में क्या गया कहा गया है, ऐसे सब बातें नहीं पूछी, खुला छोड़ा, तुम जो चाहे बताओ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है सारी दुनिया में। और प्रहलाद तो भक्त थे, तो भक्त को क्या अच्छा लगता है, भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान की भक्ति अच्छी लगती है। तो हिरण्यकश्यप के मन में यह भ्रम था कि प्रहलाद बहुत कुछ बोलेगा कि कैसे हमारे शत्रु को कुचला दिया जाए पैरों के तले, कैसे हम अच्छे राजा बन सकते हैं, ये सब बोलेगा। लेकिन प्रहलाद ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वेदों में बताया गया है कि जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है, यस्मिन विज्ञात सर्वम एवं विज्ञातम भवती, जो भगवान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जो असम्मूढ़ जो बिना संशय के मुझे जान लेता है, जानाति पुरुषोत्तम, कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, सर्वश्रेष्ठ पुरुष हूं, वो सब कुछ जान लेता है। स सर्वविद, विद मतलब जानना। इस प्रकार से प्रहलाद भी इस बात को जानते थे। तो जो व्यक्ति कृष्ण को जानता है, जो भक्ति मार्ग में है, वो वास्तव में सब कुछ जानता है, क्योंकि जो वास्तविक लाभदायक ज्ञान है, विद्या है, वो उससे जानता है। तो इस प्रकार से जब प्रहलाद को पूछा गया तो प्रहलाद तैयार हुए बोलने के लिए। अब पहली बार प्रहलाद ने आध्यात्मिक विषय के बारे में अपना मुंह खोला, और मुंह खोला तो कैसे खोला, इतने सुंदर ढंग से खोला, अपने पिता को ही उपदेश दे दिया। क्या उपदेश दिया कि ऐसे आप असुर वृत्ति की बात करते हैं, आप तैयारी कीजिए वानप्रस्थ लेने के लिए, रिटायर हो जाइए अभी, आप बहुत हो गया आपका राजा वाला का काम, ये असुरी जो धंधा है इसको छोड़ दीजिए, अभी जाइए वृंदावन। इसलिए ये सुंदर श्लोक उन्होंने कहा। ये श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज का पहला उपदेश है। और किनको उपदेश दे रहे हैं? असुर राट, राट असुर राट मतलब सम्राट, जो असुरों के सम्राट हैं उनको उपदेश दे रहे हैं। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियात असद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। बोलिएगा, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, समुद्विग्न धियात असद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, हरिमाश्रयेत। साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रह्लादुवाच, साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, सा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। माताजी, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह भगवान की शरण ग्रहण करे। काफी स्पष्ट है प्रहलाद का उपदेश अपने पिता को, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहां जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं वो जाके अपने माता पिता को ऐसे बात करें। अगर वो भक्ति में नहीं है, अकलमंदी से काम लेना चाहिए और हमें बहुत नम्रता से प्रेम से उनको भक्ति मार्ग में लाने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे जाके नहीं बोलना है कि आप भी वृंदावन चले जाओ। तो प्रहलाद प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने देखा कि हिरण्यकश्यपु उनके पिता गृहस्थ जीवन में हैं, परंतु शारीरिक आसक्ति देह बुद्धि बहुत ही ज्यादा तीव्र है, और इस वजह से उनकी असुरी वृत्ति बढ़ते जा रही थी। तो उन्होंने सोचा ये ठीक नहीं है। तो वो अपने पिता का हित चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अच्छा होगा कि वो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें, नहीं तो इस प्रकार वो आगे चलते रहे तो इतने पाप करेंगे उनको नरक में ही रहना पड़ेगा। तो इस कारण से प्रहलाद ने ऐसे उपदेश अपने पिता को दिया। तो प्रहलाद क्योंकि एक श्रेष्ठ भक्त थे, इसलिए उन्होंने शिक्षण के सारे अच्छे गुण जो है वास्तविक खुद ब खुद प्राप्त कर लिए थे। तो हम देखते हैं कि यहां भी प्रहलाद महाराज उनके पिता अपने पिता को बताते हैं, तत्साधु मन्य, फिर से साधु शब्द का प्रयोग तीसरे श्लोक में लगातार यही शब्द आ रहा है। अच्छा, तत्साधु मन्य असुरवर्य देही नाम, आपने मुझे पूछा है पिता कि सबसे अच्छी बात मुझे कौन सी लगी, तो मैं ये बताता हूं। सबसे अच्छी बात तो ये है, जहां तक मैंने सुना है, कि यहां दुनिया में रहकर जो लोग असत को ग्रहण करते हैं वो सदैव चिंतित रहते हैं, सदा समुद्विग्न उद्विग्न, संपूर्ण रूपेण उद्विग्न समुद्विग्न। तो जो बहुत ही चिंतित रहते हैं सदा, क्यों रहते हैं? धियाम असत ग्रहात, क्योंकि उनकी बुद्धि उनकी मति जो है वो असत में है, उनकी बुद्धि ने असत को ग्रहण किया है। तो जिन लोगों ने एक देह धारण किया है देही नाम, अगर वो असत को ग्रहण करते हैं तो सदा चिंतित अवस्था में रहते हैं, हे राजन। और ऐसे व्यक्ति को हित्व आत्मपातम, आत्मपातम मतलब वो स्थान जहां आध्यात्मिक संस्कृति का विकास न हो, का अनुशीलन नहीं हो रहा हो, तो हित्वा ऐसे स्थान को त्यागना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ऐसा स्थान ऐसा घर ऐसा गृह ये क्या है? अंधकूपम। अंधकूपम मतलब एक ऐसा स्थान है, कुआं है, जिसमें कोई पानी नहीं है, केवल दुख ही दुख है। गृहम अंधकूपम, यहां गृह की बात हो रही है, गृह मेधियों की बात, गृहस्थों की बात नहीं। गृहस्थ और गृह मेधी में अंतर यह होता है कि गृहस्थ पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान को अपना जीवन का केंद्र बिंदु बनाता है, अपने परिवार के सदस्यों को भगवान के भक्ति में लगाता है, और गृह मेधी वो है जिसकी बुद्धि केवल गृह में और संसार में अटकी हुई है, इसके बाहर ना कुछ वो जानता है और अगर कोई बताए भी तो उसको जानने की रुचि नहीं है। तो जब कोई कुएं में हम पानी लेने जाते हैं और उसमें कोई पानी ही न हो तो फिर क्या लाभ है। और कोई व्यक्ति सोचे कि बाहर बहुत गर्मी है, चलो ऐसे कुएं में मैं कूद दूं, थोड़ा तैर लूं, ठंडक हो जाए, और ऐसे कुएं में वो कूद जाए इसमें पानी न हो, तो परिणाम क्या होगा? केवल हड्डियां टूट जाएंगी, यही परिणाम होगा, दुख ही दुख होगा। उसी प्रकार से जो गृहमेधी अपने पारिवारिक जीवन में भगवान को बिल्कुल केंद्र बिंदु नहीं बनाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो अपेक्षा करते हैं कि इस जीवन से हमको बहुत आनंद मिलेगा। जैसे व्यक्ति कुएं के पास जाता है, सोचता है बहुत पानी मिलेगा, प्यास बुझ जाएगी, राहत मिलेगी कष्ट से, तो गृह मेधी भी ऐसे ही सोचता है, मेरे घरेली जीवन से बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख पाऊंगा, बहुत भोग करूंगा, संसार में बहुत यश प्राप्त करूंगा। लेकिन अंत में क्या होता है, देखता है कि केवल कष्ट ही कष्ट है, यही उसका अनुभव होता है। इसलिए ऐसे एक सर्वसाधारण बात कह के सामान्य लोगों के लिए फिर अपने पिता को उपदेश देते, वनम गतो यद हरिमाश्रित, ऐसे व्यक्तियों को वन में जाना चाहिए, हरिम आश्रयेत, भगवान श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण उपदेश प्रहलाद ने अपने पिता को दिया। इसका मतलब है कि वो कहना चाहते थे कि भगवान का शरण ग्रहण करो। आजकल के हिसाब से वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है पूरी तरह से अपने संसार के जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पूरा समय अपना भगवान की सेवा के लिए, भजन कीर्तन के लिए, साधन के लिए बिताना, ये है आधुनिक काल का वानप्रस्थ जीवन। जिनके लिए संभव है, कई लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों में रहते हैं, मायापुर, वृंदावन, हरिद्वार, तिरुपति वगैरह आदि लोग जाके रहते हैं, परंतु वहां अगर संग न मिले तो उतना लाभ नहीं होगा जितना कि दूसरे जगह में रह के संग प्राप्त करके हो सकता है। जब हम किसी दूसरे शहर में रहेंगे जो धाम नहीं है, परंतु वहां हमें बारंबार भक्तों का संग प्राप्त होता हो, वहां हमें दिव्य उपदेश ग्रहण करने का अवसर मिलता हो, बहुत दिन भर सेवा करने का अवसर मिलता हो, तो वो स्थान श्रेष्ठ है। क्योंकि अंततः प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हालांकि वन सत्वगुण में होता है, शहर रजगुण में होता है, और शराब का दुकान आदि वो तमोगुण में होता है, लेकिन भगवान कृष्ण और विष्णु का मंदिर ये दिव्य होता है। भगवान विष्णु या कृष्ण का मंदिर वैकुंठ से अभिन्न होता है, इसलिए अब हम साक्षात वैकुंठ में बैठे हैं। अब हम बेलगाम में नहीं हैं, यहां पर जब हम बैठे हैं, अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं, राधा गोकुल आनंद के सामने हम बैठे हैं, तो हम साक्षात वैकुंठ जगत में बैठे हैं, ये हमारी चेतना की बात है। तो यहां मंदिर में आके हम सेवा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, इस तरह से हमारा सारा जीवन ऐसे बीत सकता है। तो ऐसे अवस्था में और कोई संसार के झंझट में हमें नहीं पड़ना है, और केवल शांति पूर्वक यही देखना है कि कैसे हमारे मनुष्य जीवन को हम सफल बना सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन हो तो और कमाने की क्या आवश्यकता है उसके लिए, 60 साल की आयु तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दूसरे कारखाने वगैरह में लोग रिटायर हो जाते हैं 60 साल की उम्र में, और फिर घर में सारा दिन बैठते हैं, टीवी देखते हैं, ये आजकल का रिटायर्ड लाइफ जीवन यही है, घर में बैठ के सारा दिन टीवी देखते रहना, और इधर उधर थोड़ा समय पास करना, कभी शाम को जाना, गप्पा मारना भक्तों लोगों के साथ गार्डन में बैठकर, बस यही है उनका रिटायर्ड लाइफ। लेकिन वैसे वो उम्र तो है ज्यादा तपस्या करने के लिए, लेकिन ये लोग तपस्या करेंगे कैसे, जब जीवन भर नहीं किया तो कैसे करेंगे, इस समय इस आयु में संभव नहीं है। इसलिए शुरुआत से ही तपस्या की आदत लगानी चाहिए अपने आप को। एक थोड़े दिन पहले ही एक महिला हमसे मिलने आई थी, उनका लड़का आईआईटी में पढ़ता था कई साल पहले, अब वो वृंदावन में ब्रह्मचारी हो गया। तो हमसे मिलने आई थी, कैसे हमको मिलते रहना पड़ता है, तो आके वो सब उनके बहुत सारे परिवार के सदस्य भी आए तो हमको घेर के बैठ गए। नहीं हमारा बेटा है, बहुत से बोलने लगे। फिर अभी वो ब्रह्मचारी ने उसको गृहस्थ आश्रम में भक्ति करनी चाहिए, प्रहलाद ध्रुव भी सब गृहस्थी थे तो उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से बातचीत वगैरह हम कर रहे थे, उनकी माँ बोलने लगी कि हमारे बेटे को जब हमारे घर में आया था तो हमें बहुत दुख हुआ, ऐसे एक दुर्घटना हो गई। हमें क्या हो गया दुर्घटना, हमारा लड़का ये घर में आया और वो नीचे जमीन पे चटाई पे सो रहा था। मैंने कहा तो ठीक है, अच्छा है, उसमें क्या बुराई क्या है। नहीं है, वो ऐसे हम कैसे देख सकते हैं, हमें सहन नहीं होता कि हमारा बेटा जिसको हमने इतना सब कुछ दिया था अब वो चटाई पे नीचे जमीन पे सो रहा है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, चटाई पे सो रहा है, ऐसी तपस्या करना ये तो बहुत ज्यादा तपस्या, ऐसी तपस्या नहीं। तो उनको स्वीकार नहीं हुआ, उनका मन जो है वो इस बात को स्वीकार भी नहीं कर सकता कि आजकल कोई नीचे चटाई पे भी सो सकता है। चटाई पे सोना मतलब ऐसे मानो कि जैसे पिछले जैसे ध्रुव महाराज की तपस्या के बराबर। वो हमें बताने लगे सत्युग में जो ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, मेरा बेटा आजकल ऐसे तपस्या करता है। आजकल के कलयुग के हिसाब से ये तपस्या है नीचे चटाई में सोना। कम से कम चटाई में सोने से तो पीठ में दर्द नहीं होगा, वो डनलो पेलो में सो के ऐसे पीठ हो जाता है, बिल्कुल बक जाता है, उठते उठते फिर ये हो जाता है। इसलिए हिरण्य कशिपु, कशिपु मतलब नरम मुलायम बिस्तर, जो नरम मुलायम बिस्तर को पसंद करता है, और हिरण्य जो सोने को पसंद करता है, दोनों प्रकार के सोना, जो स्वर्ण सोना और सोने वाला सोना, दोनों प्रकार के सोने को पसंद करता है कशिपु भी। तो लोग आजकल समझते नहीं कि शुरुआत से ही तपस्या करनी चाहिए, शरीर को थोड़ा कष्ट देना चाहिए, और वास्तव में अब समझ जाएंगे कि कष्ट नहीं है, वास्तव में ये शरीर के लिए आराम है, क्योंकि आगे तक फिर शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। शुरुआत से ही बहुत सुविधाएं शरीर को दे देते हैं, बहुत आराम दे देते हैं, तो बाद में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि थोड़ी भी तपस्या सहन नहीं होती है। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही थोड़ी बहुत तपस्या सिखलाएं, और अगर हम बचपन में भगवान की भक्ति में नहीं आ पाए, थोड़ी देरी से आए हम जीवन में, तो कोई बात नहीं, जिस समय से हम भक्ति में आए हैं उस समय से कम हम कर सकते हैं। और कलयुग की तपस्या क्या है, कलयुग में ज्यादा तपस्या हम कर भी नहीं सकते अगर चाहें भी तो, क्योंकि आजकल वो शरीर रहा नहीं, वो मानसिक शक्ति भी रही नहीं, नहीं कोई स्थान है जहां जाकर हम तपस्या करें। यहां आरसीसी के जो इमारत में बैठकर क्या तपस्या करेंगे, तपस्या तो जंगल में हुआ करती थी। तो इस प्रकार से तपस्या शुरुआत से न करने की वजह से कोई वानप्रस्थ जीवन स्वीकार नहीं कर सकता। जब रिटायर हो जाते हैं तो बिल्कुल भय युक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के साथ में रहेंगे, क्यों रहना है बच्चों के साथ, जीवन भर बच्चों के साथ रह लिया, अभी बच्चों को अपना जीवन बिताना है और हम केवल भगवान के लिए रहेंगे, ये जीवन होना चाहिए वानप्रस्थ जीवन। और सच्चे देखा जाए वानप्रस्थ जीवन के बारे में शास्त्रों में इतने कठोर बातें बताई गई हैं कि हम बताएंगे नहीं, परंतु कम से कम यहां तक तो हमें सोचना चाहिए कि चाहे हम परिवार में रहें या न रहें रिटायर होने के बाद, कम से कम बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही गंभीरता से भक्ति लेनी चाहिए, भक्ति पथ को स्वीकार करना चाहिए, और जहां तक हो सके घर के मामलों में नहीं भाग लेना चाहिए। बच्चों को करने दो जो करना है। आपने उनको संस्कार दिए, आपने उनको बचपन से अच्छा प्रशिक्षण दिया, बस वो भी बड़े हो गए हैं, अपना संभालेंगे। ये है वानप्रस्थ जीवन। और क्योंकि भक्ति का संस्कार, भक्ति का वातावरण नहीं रहा है, इसलिए देखिए आजकल क्या हो रहा है, सब अपने माता पिता को घर से ही बाहर निकाल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। हम गोकुल धाम से आए तो कल वहां एक भक्त बता रहे थे कि वो एक जब वो बैलों को लेकर जाते हैं चारा चराने के लिए, तो एक बैल जो है सब बूढ़ा है मोती, तो वो तो यूं ही बस आराम से बैठा हुआ था और बाकी बैल उधर उधर जा रहे थे। तो एक पास वाले गांव का किसान आया, उसने पूछा कि अरे ये बैल को क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठा है केवल। बोला ये भक्त ने जवाब दिया कि ये बूढ़ा हो गया, अभी इतना चल फिर नहीं सकता है, तो अभी इतना दूर चल के आया तो अभी यहां आराम कर रहा है थोड़ा। अरे तो फिर आप बेच के नहीं डालते उसको? देखो आजकल के किसान भी ऐसी बात करते हैं। तो फिर भक्त ने जवाब दिया, देखो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुमको बेच डालेंगे, तुमको कैसे लगेगा? तो उसने बोला अरे ऐसे ही हो रहा है। तो क्यों, क्या मतलब क्या हो रहा है? मेरा बच्चा, मेरा लड़का गोवा में गया था, गया है वहां नौकरी करता है, बहुत शराब पीता है, और कल ही आके उसने मुझे मेरी पिटाई की और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। देखो तुम अपने पिता बैल को बेचोगे, घर से निकाल दोगे, बेच डालोगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे। क्योंकि गाय मां के समान है, बैल पिता के समान है। तो इस प्रकार से संस्कार नहीं होने की वजह से लोग बड़े होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, नहीं क्या नहीं करना चाहिए। और इनका भी दोष है, इन्होंने अपने बच्चों को कभी भक्ति नहीं दी, खुद भक्त नहीं थे और इनको भी भक्ति दी नहीं, तो ये समस्या है। तो शुरुआत होनी चाहिए अब जहां है वहां से। अगर हमारी उम्र ज्यादा हो कम हो जो भी हो, तीव्रता से भक्ति पथ को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को जब भक्ति के बारे में उपदेश दिया, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किसे, कौन से असुर को अच्छा लगेगा कि जब उसे उपदेश दिया जाए, वो भी अपना बच्चा उपदेश दे कि वृंदावन चले जाओ, जब छोड़ छाड़ के चले जाओ और भजन करो, भगवान की भक्ति करो। तो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। परंतु हिरण्यकश्यप ने क्या प्रतिकार किया, क्या कहा और आगे चल के क्या हुआ, वो और कभी हम सुनेंगे। ठीक है, आज क्या है, 29 है, 29 है, तो 30 तारीख की शाम को है ना, 30 तारीख की शाम को, कल शाम को हम बात को, इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज के इस उपदेश से आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कोई प्रश्न है, कोई टीका, कोई टिप्पणी, मतभेद? प्रश्न, प्रश्न ये है कि आजकल वानप्रस्थ जीवन में भक्ति करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो कैसे किया जाए? अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, तो आप बड़ी गाड़ी में चलेंगे। हम जैसे कोई व्यक्ति है, हमारे पास साइकिल होगा तो हम साइकिल से काम चला लेंगे, है ना? लेकिन चलाना तो है काम, वाहन जैसे जैसे है अपने प्रारब्ध के अनुसार मिला है। आपको प्रारब्ध के अनुसार बड़ी गाड़ी मिली, हमें साइकिल मिला हमारे प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन हमें भी काम करना है, आपको भी करना है, घूमना फिरना हम दोनों को है। उसी प्रकार से भक्ति तो सभी को करनी है, अपने प्रारब्ध के अनुसार जैसे वाहन मिला है, जैसे शरीर मिला है, वैसे हमें करना चाहिए। किसी के शरीर के अंदर ज्यादा तकलीफ है, किसी के शरीर में कम तकलीफ है, और ऐसा नहीं है कि केवल बुढ़ापे में ज्यादा तकलीफ होती है। आजकल हम देखते हैं कि नौजवान लोग बच्चों में भी आजकल कितनी तकलीफ, और आजकल का वातावरण ऐसे हो गया है, हम गोकुलधाम में भी चर्चा कर रहे थे कि आजकल 20 साल का लड़का भी 50 साल के आदमी के बराबर हो गया है। यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, ये है वो है, ये नहीं करता वो नहीं करता, है ना। इतने शिकायतें हैं कि आजकल बूढ़े लोग भी उतना नहीं करते, क्योंकि बूढ़े लोग तो पहले जब जवान थे तो उस समय तो कम से कम हृष्ट पुष्ट थे। तो यथाशक्ति जैसे संभव हो हमें करना चाहिए। जिस परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है उस परिस्थिति में रहकर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो होता है हमसे करना चाहिए जहां तक हो सके। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भक्तराज
मैं दाबलो चला।